पर जब से उस इंसानी जिंदगी मिली थी तब से वो अक्षत के साथ केवल दिन नहीं रात भी देख रही थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कितनी ही देर तक उपभोग करते रहते थे। और तभी अक्षत खुराना ने सोनल के होठों को चूमते हुए कहा था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी किस्मत इतनी बड़ी हो सकती है कि मेरी बाहों में इस वक्त कोई आम लड़की नहीं बल्कि ये खूबसूरत परी है। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। ऐसा कहकर एक बार फिर वो उसके गर्दन को चूमने लगा था। तभी सोनल ने कहना शुरू कर दिया था, जानते हो, जब से मैंने अमन और तारा को एक साथ देखा है और उस तरह से प्यार करते हुए देखा है तो मेरा भी दिल करता था कि काश कोई ऐसा हो जो मुझे ढेर सारा प्यार करे। और तुम यकीन जानो, मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करती हूँ और हमेशा इसी तरह से तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से खो जाना चाहती हूँ। ऐसे कहकर सोनल बड़े ही सिडक्टिव तरीके से अक्षत के साथ रिश्ता बनाने लगी थी, क्योंकि अक्षत खुराना एक नॉर्मल इंसान था और सोनल परी, भले ही इंसान यानी मिली हो लेकिन थी तो वो एक परी ही, तो उसकी महत्वाकांक्षाएं कुछ ज्यादा ही थीं। अक्षत भले ही उसे पूरी तरह से प्यार कर रहा था लेकिन वो उसे वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा था जो सोनल परी चाहती थी, तो इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा अब अक्षत से इरिटेट होने लगी थी। वहीं दूसरी ओर रानी माँ ने तारा को बताया था कि उस राक्षस के शस्त्र ने एक बार फिर तराना परी पर हमले की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने सितारा परी की मदद से उन राक्षस के शस्त्र को और राक्षस को इस बात का यकीन दिला दिया है कि जिन्नांश का अंत हो चुका है, तो वो राजी खुशी पूरे 12-13 दिन आराम से वहां गुजार सकती है और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी काली शक्ति तराना का कुछ भी बिगाड़ पाएगी। रानी माँ की बात सुनने के बाद तारा परी ने राहत की सांस ली थी और जब से तराना परी आई थी उसने अमन के साथ किसी तरह का कोई टाइम स्पेंड नहीं किया था, तो उस वक्त वो सिर्फ अपनी बेटी के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता था। तारा परी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वैसे भी तराना को आए आज 4 से 5 दिन हो चुके थे। 4 से 5 दिनों में दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के पास होते हुए भी काफी ज्यादा दूर थे। वेल, तराना को देखकर अमन सब कुछ भूल जाता था। इस वक्त उसके दिमाग में अगर कुछ चल रहा था तो सिर्फ अपनी प्यारी सी बेटी तराना की सेफ्टी चल रही थी, क्योंकि वो तराना को हर तरह से सेव करना चाहता था। इसीलिए वो सीधा दादा महाराज के बगीचे में पहुंच चुका था और वहां जाकर उसने कहना शुरू कर दिया था, दादा महाराज, आप मेरी मदद कीजिए। मैं अब काले जिन्नातों की गुलामी को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि काली शक्तियों का महादुरु अगर मुझे गुलाम बनाना चाहता है तो मैं उसकी गुलामी मंजूर करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बदले में वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी बेटी को छोड़ देगा और मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अमन की बात सुनकर दादा महाराज काफी ज्यादा क्रोधित हो उठे थे और वो कहने लगे थे, खामोश अमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम जिन हो। तुम सफेद जिन्नातों के जिन महाराज हो। तुम्हें इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी का फैसला ले चुके हो। तुम्हारी जिंदगी का फैसला ऑलरेडी लिया जा चुका है। तुम्हें जिन महाराज की ही उपाधि संभालनी होगी और वैसे भी तुम्हारे बाद अगर कोई जिन महाराज होगा तो तुम्हारी बेटी होगी और इस बार वो महाराज नहीं जिन महारानी होगी और तुम्हारी बेटी यकीनन तुमसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली होगी। और वैसे भी तुम्हारे अंदर जो अपनी बेटी को लेकर ये इमोशन जाग रहे हैं वो इंसान कभी भी नहीं जीत सकता है जो अपने इमोशंस पर काबू पा सके, और हम तुम्हें इस बात की गारंटी देते हैं कि तुम्हारी बेटी अपने इमोशंस पर ना केवल काबू पाएगी बल्कि कभी भी वो अपने इमोशंस को अपने फर्ज के बीच नहीं आने देगी। और एक और बात कान खोलकर सुन लो, तुम जब तक जिन महाराज हो तब तक तुम काली शक्तियों के महागुरु की गुलामी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सरासर सफेद जिन्नातों की बेइज्जती होगी। अब अपने दादा के इस तरह की बात सुनने के बाद अमन पूरी तरह से टूट सा गया था, क्योंकि वाकई वो इस वक्त अपने आप को एक लाचार समझ रहा था जो अपनी बेटी को बचाना तो चाहता था लेकिन उसके पास वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं थे कि वो अपनी बेटी को बचा सके। तो इसीलिए अमन अब बिना दादा महाराज को कुछ भी कहे वापस लौट आया था। वो समझ चुका था कि दादा महाराज उसकी किसी तरह की कोई बात नहीं सुनने वाले हैं। वहीं जैसे ही वो लौट कर आया उसने देखा कि तारा उस वक्त अकेले बेड पर लेटे हुए थी और तराना उसके आसपास कहीं नहीं थी। अब जैसे ही अमन ने ये देखा कि तराना परी वहां नहीं है तो अमन की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और वो तुरंत तारा के करीब गया था और उसे उठाते हुए कहने लगा था, तारा, तारा, हमारी बेटी कहाँ है और आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? बोलिए, जवाब दीजिए, मुझे बताइए कहाँ है हमारी बेटी। ऐसा कहकर तराना को तारा के पास ना पाकर वो थोड़ा सा घबरा गया था, तो इसीलिए जल्दी जल्दी में एक ही साथ में 4 से 5 बार अपनी बेटी के बारे में पूछ चुका था। तभी तारा अमन को आराम से शांत करते हुए कहने लगी, लगी थी। अमन सर, आपको हो क्या गया है? आप इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना, करिश्मा मॉम और अमरिंदर पिताजी ने जादुई शॉल का निर्माण कर लिया है, तो इस वक्त उस जादुई शॉल में हमारी बेटी बिल्कुल सुरक्षित करिश्मा मॉम के पास है। अब जैसे ही अमन ने ये सुना कि जादुई शॉल का निर्माण हो चुका था, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। उसकी अब सारी प्रॉब्लम दूर हो चुकी थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वाकई जादुई शॉल इतनी जल्दी उन्हें मिल जाएगा और वो अपनी बेटी की सेफ्टी को लेकर जो इतना दुखी था, उसकी चिंता एकदम से ही उससे दूर हो जाएगी। अचानक खुशी से उसने तारा परी, जो कि बेड पर बैठी हुई थी, ठीक उसी वक्त उसे गले से लगा लिया था। और तारा और अमन एक दूसरे के काफी करीब थे, क्योंकि 4 से 5 दिनों तक वे एक दूसरे के करीब नहीं आए थे, क्योंकि वे दोनों ही एक दूसरे से हमेशा से ही ढेर सारा प्यार किया करते थे। लेकिन अब जैसे ही अमन और तारा एक दूसरे के करीब आए, अचानक से तारा के अरमान भी जाग गए थे और उसने शुरुआत करते हुए अमन के होठों पर अपने होठों को रख दिया था। और अमन, जो कि उस वक्त काफी ज्यादा स्ट्रेस में था, तो उस वक्त उसने तारा का आगे बढ़कर साथ देना शुरू कर दिया था और जल्दी ही दोनों एक दूसरे को जी भरकर प्यार करने लगे थे। अब अमन ने तारा के जिस्म से उसके कपड़ों को पूरी तरह से अलग कर दिया था और उसके हर एक अंग को पूरी तरह से चूमने लगा था। वो तारा का प्यार पाकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी और कितनी ही देर तक वो उसका साथ देती रही थी। और इतना ही नहीं, तारा के साथ अमन ने घंटों जिस्मानी रिश्ता बनाया था। उसके बाद जैसे ही अमन उठा और कहने लगा कि अभी हमें अपनी बेटी के पास जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि करिश्मा मॉम को ये लगे कि हम अपनी बेटी को भूल गए हैं, जबकि तारा परी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उनकी बेटी करिश्मा मॉम के पास है तो पूरी तरह से सुरक्षित है और वो उसका अच्छी तरह से ख्याल रख सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए तारा ने आरामदायक लहजे में अमन से कहा था कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, करिश्मा मॉम उसका बहुत ख्याल रख सकती है और अभी मेरा दिल नहीं मान रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि फिर आप एक बार और मेरे साथ प्यार करें। अब जैसे ही तारा ने ये कहा, अमन हैरान हो गया, क्योंकि आज तक तारा ने कभी भी उसे प्यार करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन आज तारा ने खुद से उसे प्यार करने के लिए कहा था तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी उसने गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा था, ठीक है, आप मेरा इंतजार कीजिए,
मैं बस अभी आता हूँ। ऐसा कहकर अमन जल्दी ही वहाँ से निकलकर बाथरूम में जाने लगा था। वहीं दूसरी ओर तारा परी उठ बैठी थी, लेकिन वो सोचने लगी थी कि अमन को खुद से ये सब करने के लिए कहना कितना ज्यादा ऑकवर्ड था। लेकिन तारा जानती थी, क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय अमन के साथ गुजारना चाहती थी, उसे ढेर सारा प्यार करना चाहती थी, तो इसलिए उसने अमन को एक बार फिर अपने पास आने के लिए कह दिया था। कहीं ना कहीं तारा सोचने लगी थी कि कहीं अमन उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा ना सोच ले। ये सोचते हुए उसके गाल अचानक से तपने लगे थे। वहीं अमन जल्दी ही एक बार फिर तारा के सामने आ गया था और उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहने लगा था, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी के आने के बाद तुमसे मेरी मोहब्बत कम हो गई है, इसलिए तुम मुझे अपने पास रहने के लिए कह रही हो ना? अब जैसे ही अमन ने कहा, तारा हल्की सी मुस्कुरा कर कहने लगी थी, शायद आप जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली 4-5 दिन से आप मेरे करीब नहीं आ रहे थे, तो मुझे आपकी कमी से महसूस हो रही थी, तो इसीलिए बस मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारना चाहती हूँ। जैसे ही तारा ने ये कहा, अमन मुस्कुरा कर उसकी ओर देखने लगा था और जल्दी ही अमन ने तारा के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और एक बार फिर पेशेंटली उसे किस करने लगा था। वहीं दूसरी ओर करिश्मा जी और अमरेंद्र जी दोनों ही उस वक्त तराना के साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। दोनों तराना का साथ पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। समय का पता ही नहीं चला था कि ऑलरेडी 6 से 7 घंटे हो चुके हैं और तराना उन दोनों के पास ही थी। तराना को तारा परी दूध नहीं पिलाया करती थी, क्योंकि तराना को खाना पीना कुछ भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि तराना के लिए जिन्नातों की दुनिया से ही एक विशेष तरह का शरबत आया करते थे, जो कि खुद बखुद जिन उसे पिलाकर जाया करते थे। तो इसीलिए जल्दी ही एक बार फिर जिन्नातों की दुनिया से कुछ जिन आए थे और तराना को उन्होंने अपने हाथों से शरबत पिलाया था। शरबत पिलाने के बाद वे वहां से जा चुके थे, क्योंकि तराना सफेद जिन की वारिस थी और साथ ही साथ वो अब तक की सबसे ज्यादा शक्तिशाली जिन महारानी थी, तो इसलिए सबको उससे एक अलग तरह की उम्मीद जाग चुकी थी। तो तीनों टाइम तराना के लिए जिन्नातों की दुनिया से ही दूध यानी शरबत आया करता था और जैसे खुद जिन पिलाकर जाया करते थे, तो इसलिए तराना की किसी तरह के खाने पीने की किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। धीरे धीरे करके इसी तरह से दिन गुजरने लगे थे। तारा ज्यादा से ज्यादा अमन में डूबी रहती थी और उसके साथ टाइम स्पेंड किया करती थी। कहीं ना कहीं तारा को लग रहा था कि उसके पास केवल ये 12 दिन ही हैं। 12 दिन में जितना चाहे उतना वो अमन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी और ढेर सारी यादें सजोकर ले जाना चाहती थी। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे, वैसे वैसे तारा के दिल की बेचैनी बढ़ते जा रही थी, क्योंकि अमन से दूर रहने के बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी तारा सेल्फिश होती जा रही थी, क्योंकि इस वक्त उसके लिए उस राक्षस का अंत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अगर उस राक्षस का अंत नहीं होगा तो और राक्षस तीनों लोगों को पूरी तरह से तबाह कर देगा। ये बात तारा परी अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि तारा का खूबसूरत जिस्म उस राक्षस की सबसे बड़ी कमजोरी था। बेल, काली शक्तियों का मालिक महागुरु, अमन से अनजाने में इस बात का वादा ले चुका था कि काली शक्तियों के जंगल में किसी भी काली शक्ति पर कोई भी सफेद जिन किसी तरह का कोई हमला नहीं करेगा, और अगर वो हमला करता है तो उसका किया गया हर एक काम विफल हो जाएगा। तो इसीलिए महागुरु, जो इस बात का पता लगाना चाहते थे कि आखिरकार उस जादुई शॉल का अंत किसने किया था, क्योंकि उन्होंने तो अपनी किसी काली शक्ति को अब तराना को मारने के लिए नहीं भेजा था, तो इसके लिए उन्हें अब जल्दी ही सारी बातों के बारे में पता चल चुका था। और वो ये जान चुके थे कि जिस राक्षस के अंश ने एक बार उन सर्प महाराज का सामना किया था और हिडिम्बा का जादू तोड़ा था, इस राक्षस की माँ और साथ ही साथ में राक्षस दोनों ही तारापरी के पीछे हैं, क्योंकि उन्होंने तारापरी की पूरी डिटेल्स निकाल ली थी, लेकिन केवल पिछले जन्म की, जिसमें उन्हें ये बात पता चल चुकी थी कि तारापरी पिछले जन्म की राधा थी। और साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चल चुका था कि तारापरी के जिस्म का दीवाना वो राजा, जो कि अतृप्त मर गया था, वो एक बार फिर जीवित हुआ था, वो भी राक्षस योनि के रूप में। तब काली शक्तियों के महागुरु हंसने लगे थे, क्योंकि वो तो सफेद जिन्नों को बर्बाद देखना चाहते थे। अगर सफेद जिन्नों को बर्बाद कोई राक्षस या उसकी माँ करती है तो उससे भी उन्हें फायदा ही होने वाला था, लेकिन वो केवल ये जान पाए थे कि अमन की बीवी, जिसने इंसान बनकर जन्म लिया है, उसके पिछले जन्म का आशिक राक्षस योनि में उससे मिलने के लिए आया है।